ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। गुलमी, बागलुंग और स्यांगजा में भूस्खलन में दबने से 9 लोगों की हुई मौत। राष्ट्रीय धान दिवस के अवसर पर देश भर हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। धान के उत्पादन और उत्पादकत्व की बढ़ोतरी सरकार की प्राथमिकता में है, प्रधानमंत्री का कथन। नेकपा एकीकृत समाजवादी का राष्ट्रीय महाधिवेशन कल काठमांडू में होगा शुरू। और भारत के लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक अचानक आई बाढ़ में 5 भारतीय सैनिकों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। गुलमी, बागलुंग और स्यांगजा में भूस्खलन में दबने से 9 लोगों की मौत हो गई। गुलमी की मालिका गांव पालिका वार्ड नंबर 6 कंडेलपाटा में भेस बहादुर कामी का घर भूस्खलन में दब गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। ये जानकारी जिला प्रहरी कार्यालय गुलमी के इंस्पेक्टर सूर्यभान चौधरी ने दी। हादसे में 55 वर्षीय भेस बहादुर कामी, 48 वर्षीय सुंतली कामी, 26 वर्षीय सीता विश्वकर्मा, 8 वर्ष के समना विश्वकर्मा और 8 महीने की विपना विश्वकर्मा की मौत हो गई। इसी तरह बागलुंग में भूस्खलन में घर दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। जिले की गलकोट नगरपालिका वार्ड नंबर 8 काड़ेवास बिसौनी के 55 वर्षीय प्रेम विश्वकर्मा और उनकी पत्नी 50 वर्षीय वसंती विश्वकर्मा की मौत की जानकारी पुलिस ने दी। दूसरी तरफ स्यांगजा की फेदीखोला गांवपालिका वार्ड नंबर 5 बागे में बीती रात आए भूस्खलन में घर के दबने से 31 वर्षीय दुर्गा जयसी और उनकी 3 वर्षीय बेटी निशिका की मौत हो गई। आज राष्ट्रीय धान दिवस के देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। धान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में रोपाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। रोपाई कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल, प्रथम महिला सविता पौड़ेल सहित अन्य लोग भी सहभागी हुए। 21वें राष्ट्रीय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2081 के अवसर पर आज चितवन में आयोजित कार्यक्रम को प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि धान के उत्पादन और उत्पादकत्व में बढ़ोतरी को लेकर जलवायु मैत्री प्रविधि का अनुसंधान, विकास और प्रसार सरकार की प्राथमिकता में है। इसी तरह आज सुनसरी की गढ़ी गांव पालिका वार्ड नंबर 6 छिठा में आयोजित कार्यक्रम में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री भगवती चौधरी ने कहा कि पारंपरिक कृषि पद्धति से उत्पादकत्व नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए कृषि का आधुनिकीकरण, यांत्रिकीकरण और व्यवसायीकरण जरूरी है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने कहा कि समान विचारधारा और दृष्टिकोण निर्माण करते हुए वामपंथी शक्तियों के एकताबद्ध होने की बात पर वे स्पष्ट है। आज काठमांडू में नेकपा के संस्थापक महासचिव पुष्पलाल के जन्म शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने ये बात कही। कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री पदम गिरी ने कहा कि पेयजल संबंधी उपभोक्ता मैत्री कानून आवश्यक है। पर्वत के शिवालय पेयजल उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्था के 18वां साधारण सभा में मंत्री गिरी ने उपभोक्ता को न्यून महसूल लगने के हिसाब से आयन संशोधन के आवश्यकता पर जोर दिया। एक अलग प्रसंग में मंत्री गिरी ने कहा कि बदमाशी करने वाले सहकारी संचालक को कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G वीडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलीकॉम को 4G
सब को यो विश्वास होनी नेपाल टेलीकॉम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नोजी नेपाल टेलिकमको 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकमको 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका राष्ट्रिय महाधिवेशन कलसे काठमाण्डुमै शुरू हुने जा रहा है। आज महाधिवेशन के बारे में जानकारी देने के लिए काठमाण्डुमै आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने कहा कि महाधिवेशन की सम्पूर्ण तैयारी पूरी हो चुकी है और महाधिवेशन में प्रस्तुत की जाने वाली आवश्यक दस्तावेज तैयार हो चुकी है। अध्यक्ष नेपाल ने कहा कि वह दस्तावेज कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में नए और जनाधिकार के पक्ष में महत्वपूर्ण होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मानित नेता झलनाथ खनाल ने कहा कि महाधिवेशन से पारित होने वाले वैचारिक दृष्टिकोण तथा कार्यक्रम के आधार पर नेतृत्व चुने जाएंगे। महाधिवेशन में 1849 प्रतिनिधियों का सहभागिता रहेगी। कल से 20 गते तक प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी में शुरू होने जा रहे महाधिवेशन में राजनीतिक प्रतिवेदन, समाजवादी कार्यक्रम, विधान संबंधी और सांगठनिक प्रतिवेदन पर विचार विमर्श होगा। सुदूर पश्चिम प्रदेश में डेंगू और स्क्रब टाइफस के मरीज बढ़ते देख उसके विरुद्ध अभियान शुरू किया गया है। बीते मार्च से अब तक 116 लोगों में डेंगू तथा 409 लोगों में स्क्रब टाइफस संक्रमण की पुष्टि होने के बाद अभियान शुरू किया गया। ये जानकारी सुदूर पश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय ने दी। बरसात शुरू होने के साथ डेंगू और स्क्रब टाइफस के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और ये जानकारी निर्देशनालय के वेक्टर कंट्रोल अधिकृत हेमराज जोशी ने दी। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक अचानक आई बाढ़ में 5 भारतीय सैनिकों की डूबकर मौत हो गई है। सेना के अधिकारियों के मुताबिक यह हादसा लद्दाख के पास दौलत बेग ओल्डी इलाके में हुआ। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 सैनिकों की मौत पर दुख जताया है। हादसा शुक्रवार को उस समय हुआ जब ये सैनिक टैंकों के साथ किए जाने वाले एक अभ्यास के दौरान नदी पार कर रहे थे। उसी समय नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। हादसे के वक्त टैंक पर 5 सैनिक सवार थे। इनमें एक जेसीओ और 4 जवान शामिल है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक लेह में डिफेंस पीआरओ ने बताया है कि 28 जून 2024 की रात को एक मिलिट्री ट्रेनिंग गतिविधि के दौरान पूर्वी लद्दाख में सासेर ब्रांगसा में नजदीक श्लोक नदी में एक आर्मी टैंक फंस गया था। यह टैंक अचानक आई बाढ़ की वजह से फंस गया था। बचाव दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन तेजी से बढ़ते जलस्तर की वजह से बचाव दल अपने अभियान में कामयाब नहीं हो सका और टैंक क्रू के सभी सदस्यों ने अपनी जान गंवा दी। अमेरिका राज्य न्यूयॉर्क में सड़क हादसे के मामले में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब एक मिनी वैन के नेल सैलून में दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य 9 लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। न्यूयॉर्क की रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों का कहना है कि मिनी वैन शुक्रवार को शाम को 4:30 बजे लॉन्ग आइलैंड के डियर पार्क में नेल सैलून से टकरा गई। दुर्घटना का सही कारण अभी की भी पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने आगे बताया, सभी मृतक नेल सैलून के अंदर थे। यह सभी के लिए काफी खतरनाक मंजर था। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि साथ ही इससे समुदाय पर भी असर पड़ेगा। वहीं स्वयंसेवी अग्निशमन विभाग के लिए भी काफी मुश्किल परिस्थिति है, लेकिन हम इससे जल्द ही उभरेंगे। बस डियर पार्क अग्निशमन विभाग के सहायक प्रमुख डेमिनिक अल्वाजिन का भी यह मामले में बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, विशेष रूप से साल से इस समय में अभी अच्छी चीजें हो रही है। ड्राइवर को अस्पताल ले जाया गया और वह होश में आया है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया है। बता दें कि हवाई नेल एंड स्पा नामक नेल सैलून डियर पार्क के एक शॉपिंग क्षेत्र में कई दुकानों में से एक है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गुल्मी बागलुंग और स्यांगजा में भूस्खलन में दबने से 9 लोगों की हुई मौत। राष्ट्रीय धान दिवस के अवसर पर देश भर हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित। धान के उत्पादन और उत्पादकत्व को बढ़ोतरी सरकार की प्राथमिकता में है, प्रधानमंत्री का कथन। नेकपा एकीकृत समाजवादी का राष्ट्रीय महाधिवेशन कल काठमांडू में होगा शुरू। और भारत के लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक अचानक आई बाढ़ में 5 भारतीय सैनिकों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।